ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वदक्षाय साक्षिणो पुरुषात्मूलाय मूल प्रकृतये नमः। अनुवाद उत्पाद पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष प्रकृति तथा समय भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु हार्थ। के भरतवंशी, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। हमें से हर व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर हूँ या यह मेरा शरीर है, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न है। हमें यह शरीर परम स्वामी द्वारा प्राप्त है। जीव जो कि क्षेत्रज्ञ भी है, शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है जो परम क्षेत्रज्ञ है। उदाहरण, हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु इस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक ही होता है। इसी प्रकार हमें भी किसी एक प्रकार का शरीर मिलता है जिसमें हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान ही होता है। वह सर्वाध्यक्ष कहलाता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उसी की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मैया अध्यक्षेण प्रति सुयते सचराचरम, कि हे कुंती मुत्र, हे प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, सभी चार तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। प्रकृति से न जाने कितनी तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिनमें जलचर, पेड़ पौधे, कीट पतंग, पक्षी, पशु, मनुष्य तथा देवता सम्मिलित है। प्रकृति माता है, भगवान पिता है। अहम बीज प्रदह पिता, प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान कर सकती है, किंतु आत्मा के रूप में हम रहते हैं भगवान के ही अंश रूप में। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी है, मामय मनसो जीव लोके जीव होता सनातना। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है। अतः इस श्लोक में भगवान का आत्ममूल अर्थात प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत कहा गया है। ये सारे जीवों के बीज रूप है, बीजम माम सर्वभूताना। मैं भगवान कहते हैं कि सर्व योनिषिकन्ते मूर्तय सम्भवन्ति तासाम ब्रह्महत् योनिरः बीज प्रदः पिता। कि हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और मैं वीरदाता पिता हूँ। पौधे, वृक्ष, कीड़े, जलचर, देवता, पशु, पक्षी तथा अन्य सारे जीव भगवान के पुत्र अंश हैं, किंतु भिन्न भिन्न मानसिक पवित्रों के साथ संघर्ष करने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। मनस्तादिंद्राणी प्रतिस्थानी कर्षति, इस प्रकार उस प्रकृति के पुत्र हैं जिसके वीरदाता भगवान है। इस जगत में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और जन्म मृत्यु के चक्र में एकमात्र मोक्ष या छुटकारे की विधि है पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका संकेत नमः शब्द से मिलता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चरचरुन्नतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो प्रसंग चल रहा है बहुत ही सुंदर प्रसंग है और शिक्षा प्रद भी है। और गजेंद्र जो हाथियों के राजा थे वो मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये दृश्य इस प्रकार से है कि क्षीर सागर के मध्य में एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत है। क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का सागर। जैसे इस भौतिक संसार में जो सागर दिखाई देता है वो सागर क्या है? नमक का सागर। यहाँ का पानी क्या होता है? आप लोग पिए हैं कि नहीं? कभी चखिए, समुद्र जाए चखिए कैसा पानी होता है। ये जो नमक आप खाते हैं इस समुद्र के पानी से ही बनता है, इसको सुखा करके। लेकिन ऐसे घी, शहद है ना, दूध के भी सागर हैं, शहद के भी सागर हैं, घी के भी सागर हैं। तो ये जो दृश्य है, घटना है, ये क्षीर सागर, दूध के सागर के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, विशाल पर्वत, जिसकी लंबाई चौड़ाई 80,000 किलोमीटर बताई गई है। और उसकी जो तीन ऊंचाइयां हैं जिसे चोटी बोलते हैं, सोने की चोटी भी है, लोहे की भी चोटी है और चांदी की चोटी है। इतना बड़ा पर्वत, विशाल पर्वत। और उसी चोटी के ऊपर बहुत ही सुंदर एक गार्डन है, बगीचा है, जिस बगीचे का नाम ऋतुमत नाम का एक बगीचा है। और उस बगीचे के बीच में एक बहुत ही सुंदर सरोवर है। और सरोवर में ये हाथी गजेंद्र जो है स्नान करने पूरे परिवार के साथ गए थे। हाथी, हथनी, छोटे छोटे उनके बच्चे सब जल क्रीड़ा कर रहे थे। हाथी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जल। इसीलिए जो महावत होते हैं हाथी को ले चलने वाले, वो जब हाथी कहीं ले जाते हैं तो रूट डिसाइड करते हैं, उस रूट से नहीं जाएंगे जहां कोई जलाशय हो। कि हाथी की नजर में जलाशय पड़ गया फिर महावत कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? जल। वो जल में डुबकी लगाने जाएगा, एक बार चला गया फिर निकलने की इच्छा नहीं होती उसकी, ऐसा होता है। तो हाथी और हथनी उनके बच्चे सब जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा का भी आनंद होता है, जल के बीच में जो नहाते हैं फिर एक दूसरे पर पानी जो है फेंकते हैं, तो सोन से पानी फेंकना, बुझार करना, ये जल क्रीड़ा, तो आनंद उठा रहे थे। उसी आनंद के बीच में एक घड़ियाल है ना, जो घड़ियाल होता है वो बहुत पावरफुल होता है, उसकी बहुत बड़ा मुंह होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं आरा की तरह है। और हाथी का जो पांव है वो क्या करता है? पकड़ लेता है। और हाथी का पांव पकड़ कर गजेंद्र का हाथ पकड़ कर वो पानी की ओर खींच रहा है, और वो अपने छुड़ाने के लिए जमीन की ओर जा रहे थे। एक तरह से रस्सा कसी चल रही थी, घड़ियाल अपनी ओर खींच रहा था और बचना चाहते थे। ऐसे बताया गया भागवतम में कि 1000 साल तक युद्ध होता है। लंबा युद्ध 1000 साल बहुत होता है, 1000 साल तक इस तरह से युद्ध होता रहा। और जितने भी उनके बच्चे थे, परिवार के लोग थे, धनिया थे, ये सब देख रहे थे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा था, उनके बस की बात नहीं थी। 1000 साल के बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि हाथी कमजोर पड़ने लगा, गजेंद्र जो है वो कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि जो घड़ियाल होता है जल में उसकी बहुत ताकत होती है। हाथी की ताकत बाहर होती है जमीन पर, लेकिन जल के अंदर उसकी ताकत क्या होती है? कम होती है। इसलिए वो पराजित होने लगे और धीरे धीरे घड़ियाल मजबूत होता गया और खींचता चला गया। खींचते खींचते इतने गहरे में पानी में ले गया, उनका जो सूंड है इतना सा दिखाई देने लगा कि वो मरने वाले थे। तब कौन याद आए? कृष्ण याद आए। इंसान जब मरने लगता है ना, तब भी नहीं याद करता। ये बेचारे गजेंद्र हैं, वो कम से कम भगवान को याद कर लिए है ना। इंसान एक ऐसा है कि वो मरने तक भी किसको भगवान को याद नहीं करता है ना। जब हमको किसको याद करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। ये शिक्षा है कि आपको इसमें बताया गया कि उस समय जिसमें गजेंद्र इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे थे, इतना बड़ा उनका परिवार था, कोई आया नहीं उनके पास। यही समस्या आप सबकी, हम सबकी। एक समय अगर आपको बीमारी पड़ गई है ना, अगर आपके पेट में दर्द होने लगा, तो पूरे परिवार के लोग जो है सब रोएंगे, पीटेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन जो आपको दर्द हो रहा है कोई शेयर नहीं करेगा। कोई शेयर करता है? कोई शेयर नहीं करता। अकेले आपको ही कष्ट को क्या करता है, सहन करना पड़ता है। उसमें कोई शेयर नहीं करता कि आधा आधा हम लोग दर्द ले लेंगे, आपका दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप बीमार हैं, कष्ट में हैं, तो आपको अकेले भुगतना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मुसीबत में भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि जब हम सुखी में रहें, सुख में रहें, हमें तभी क्या करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। इससे क्या होगा, दुख आएगा ही नहीं। अगर दुख आया भी है तो भगवान उसको क्या करेंगे, बहुत कम कर देंगे। अगर आप मरने वाले होंगे तो थोड़ा सा चोट लग जाएगी, भगवान मिनिमाइज कर देंगे, पावर बचा लेंगे। हमारी समस्या क्या है कि हम भगवान को बिल्कुल याद नहीं करते। आजकल की जो समस्या है, 99% लोग भगवान को याद नहीं करते, राइट? सोचते हैं भगवान को याद करना, कीर्तन करना, गीता पढ़ना, ये हरे कृष्णा वालों का काम है। ऐसा थोड़ी है, ये सब का काम है। भगवान का नाम लेना इस सब की जिम्मेदारी होती है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो देखो गजेंद्र कितना बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा हैं और हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी आप स्वयं हैं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है भगवान को सब पता है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हमारे में ये अंतर है, मैं तुम्हारे मन की बात जान लेता हूं लेकिन तुम दूसरे के मन की बात नहीं जान पाते। लेकिन मैं सबके दिल में क्या चल रहा है, सबके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान हूं। इसीलिए हम सिर्फ अपने मन के, अपने मन में क्या चल रहा है हमको पता है, लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमको पता नहीं चलता, लेकिन भगवान को सब पता चलता है। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कोई देख नहीं रहा है हम गलत काम कर रहे, राइट? लेकिन जिसको देखना चाहिए, जो दंड देने के अधिकारी भगवान कृष्ण हैं, वो तो देख ही रहे हैं, वो तो जान ही रहे हैं, तो उनसे डरो। आज इंसान इतना गलत काम कर रहा है क्यों? उसे भगवान का डर नहीं। सच है कि नहीं सच है? यही सच है। लोगों को भगवान को कुछ महत्व नहीं देते, जबकि गजेंद्र कहते हैं कि आप प्रकृति तथा समग्र भौतिक शरीर के उद्गम, ये जो शरीर मिली हुई है हम सबको, ये शरीर बनाने वाला कौन है? भगवान। और शरीर को चलाने वाले भी कौन है? भगवान। आप लोग बताइए कि जीवन के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी? जीवन जीने के लिए आदमी जितना मेहनत करता है किस लिए करता है? जीवन के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोले? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी रोटी कपड़ा। मैं पिछले साल जब बंबई गया था तो हम उनके घर भी गए थे, तो हमारा उनका वादा है कि हम जब भी बंबई जाएंगे तो प्रॉमिस किया कि उनके घर जरूर जाएंगे, तो हम जाते हैं। तो लेकिन बड़ा मकाम, ये तो बात की बात है। जीवन के लिए, जीवन का जो आधार है हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जीने के लिए वह वायु। क्या है वायु? आप वो सांस ले रहे हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले सांस ही देखता है कि सांस चल रही कि नहीं चल रही। अगर सांस नहीं चल रही तो मृत घोषित कर देता है। अब आप खुद बताइए, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम हवा ले रहे हैं, है ना, ये कौन सप्लाई कर रहा है? नहीं नहीं कोई वैज्ञानिक सप्लाई कर रहा है। आज इतना एडवांस लोग हो गए हैं, विज्ञान अपने आप को बहुत अहंकार वैज्ञानिक हूं। आप खुद सोचिए कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये दावा नहीं कर सकता न भविष्य में करेगा कि हवा मैं सप्लाई कर रहा हूं, मेरी लेबोरेटरी हवा बन रहा है, मैं सबको दे रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जीने के लिए सबसे कीमती वस्तु क्या है? हवा, वायु। अब वायु के लिए किस पर निर्भर है? भगवान। इस सांस कितनी कीमती होती है जानते हैं? आपको पता चलता है जब आप 5-स्टार हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। आजकल हॉस्पिटल 5-स्टार बने हुए, राइट? अपोलो है, मेदांता है, फोर्टिस, राइट? इट्स 5-स्टार हॉस्पिटल। और उसमें जब आईसीयू में इंसान भर्ती हो जाता है, एक एक पल जीने के लिए, एक एक सांस लेने के लिए उसको बिल जमा करना पड़ता है। और जैसे आईसीयू में डाल देंगे उनका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। एक एक पल जीने के लिए, सांस लेने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। अब आप लोग, पूरा दुनिया के लोग, जितने भी जीव पशु पक्षी जानवर हैं, सब सांस ले रहे हैं। अगर भगवान बिल लेना लगे आपसे, आप दे पाओगे? हॉस्पिटल में तो आपको बिल दे देना पड़ता है, 1,00,000, 10,00,000, 5,00,000 रुपए, है ना, बिल दे देते हैं। लेकिन भगवान का हवा आप ले रहे हो, है ना, अब बिल दे रहे हो। अगर भगवान अगर बिल भेजने लगे तो जिन आप कभी दे नहीं पाओगे। 30 सेकंड तक बिना वायु के आप नहीं जी सकते। अगर आपका नाक और मुंह दबा दिया जाए तो 30 सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे जीवन जीने के लिए सबसे कीमती क्या है? वायु। और कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। दूसरा स्थान आता है जल का। बिना जल के आप जीवित नहीं रह सकते। मई जून का महीना में जो व्रत निर्जला एकादशी आते हैं, उनसे पूछिए निर्जला व्रत रखते हैं, है ना, और सुबह होते होते उनकी हालत खराब हो जाती है। अगर राइट टाइम पानी नहीं मिलेगा तो गिर पड़ेंगे। जल के बिना आप 2 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते, क्योंकि जल ही जीवन है। तो वायु, जल, और उसके बाद क्या आता है? अन्न, अनाज। भगवत गीता भगवान कहते हैं कि अनाज की उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? जल से होती है। और जल किससे होता है? वर्षा से, है ना। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। तो आप जब इस कलयुग में हरि नाम से कनेक्ट करेंगे तो वर्षा विद्युत होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वर्षा से जल मिलता है और जल से अन्न मिलता है, तब हमारा जीवन चलता है। अब आप खुद सोचिए कि जीवन जीने के लिए ये 3 वस्तुएं सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। अब फिर भी हम इतने निठल्ले हैं कि जो हमको जीवन दे रहा है, है ना, जीवन जीने के लिए ये 3 वस्तुएं दिया हुआ है, हम ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम हम नहीं लेते। यह इंसान की सबसे बड़ी क्या है? कमी है। हम लोग लायक नहीं है। जो भगवान, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? लायक बोलते हैं। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं सुनता उसको क्या बोलते हैं? नालायक बोलते हैं। तो हम लायक है या नालायक बताए? अगर हम भगवान की बात नहीं सुनते, कि भगवान गीता बताते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, है ना, सदैव मेरे नाम का क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। भगवान ही बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मन, है ना, अपना मन मेरे में लगाओ, मुझे प्रणाम करो। भगवान तो करते हैं, लेकिन भगवान चूंकि हमारे माता और पिता हैं, हमारे जीवन के आधार हैं, हम उनकी बात नहीं मानते। भगवान कहते मन मना दो, हम मनमानी भी हो जाते हैं। हम भगवान की बात सुनते हैं तो वास्तव में हम सब क्या है, नालायक। लायक वही है जो भगवान के अनुसार अब जीवन क्या करता है, जीता है। इसलिए हमें लायक बनना चाहिए, क्योंकि यही तो गजेंद्र कर रहे हैं कि जो कृष्ण है, जो परम पुरुष है, वही हमारे हर वस्तुओं के क्या स्रोत, उद्गम। हर वस्तु किससे आती है, कृष्ण से आती है। वायु, जल, अन्न, है ना, ये सब चीजें किससे आती हैं, भगवान से आती है। ऐश्वर्य, सुंदरता, बल, धन, ये किससे आती है, भगवान से आती है। भगवान हमको देते हैं, किसको थोड़ा सुंदरता ज्यादा दे दिया वो मिस इंडिया बन गया, मिस यूनिवर्स बन गया, राइट, मिस वर्ल्ड बन गया। बल ज्यादा दे दिया तारा सिंह सब पहलवान बन गया, ज्यादा बुद्धि दे दी वैज्ञानिक बन गया। लेकिन बनाता कौन है, कृष्ण ही बनाते। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। यही गजेंद्र पहले याद नहीं कर रहा था जब मस्ती में था, है ना, तब तो खूब जल क्रीड़ा कर रहे थे, मस्त है, पत्नी के लिए, बच्चों के, परिवार के बीच में खूब इंजॉय कर रहे थे। जब घड़ियाल टांग खींचा तो भगवान याद आ गए। यही संसार है, जब संसार आदमी भगवान को याद करता है, जब माया उसको क्या करे, थप्पड़ मारती है, जब इंसान परेशान होता है तो मंदिर मस्जिद तोड़ने लगता है, सही कहने से। और जब मुसीबत नहीं रहता तो क्लबों में जाता है, राइट, दारू पिएगा, नशा करेगा, सिनेमा देखने जाएगा, पीवीआर में जाएगा, मस्ती लेगा, राइट, हुक्का भाज हुक्का पिएगा, ये करता है। जैसे पंजाबी बाग क्लब में यहाँ जाएंगे, राइट, यही सब करते हैं, पार्टी अटेंड करेंगे। जब मुसीबत पड़ेगा तो हाथ पीछे चल जाएंगे, तब मंदिर याद आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सदैव आनंद में रहना चाहते हैं तो हमें सदैव भगवान का कीर्तन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान आपकी चिंता करेंगे। समय सही है कि हम भगवान का चिंतन नहीं करते तो भगवान हमारी चिंता नहीं करते। आप चाहते हैं कि भगवान आपकी चिंता करें, आपकी सुरक्षा करें, तो आप भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इंसान तीन चीजों में फंसा हुआ है, वो तीन चीजें क्या है कौन बताएगा? इंसान तीन चीजों में फंसा हुआ है, वो जानते क्या है, काम, क्रोध और लोभ। गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये तीनों क्या है, नरक के। तो आप स्वर्ग कैसे जाएंगे? अगर आपको स्वर्ग जाना है, लोग क्या करते हैं, जब घर का कोई मर जाता है तो अखबार में लिखवाते हैं स्वर्गवास हो गया, और नरक में ही जाता है वो आदमी, लेकिन लिखने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है ना, हम लिखो क्या लिखवाते हैं, स्वर्गवास, स्वर्ग चले गए, वो नरक में ही जाते हैं। कि स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, आपके कहने थोड़ी आप स्वर्ग चले जाओ, है ना, स्वर्गवास हो गया। कोई नहीं लिखाता कि नरकवास हो गया, जबकि 99.9% लोग नरक में ही जाते हैं। क्या गीता भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ एक किसके द्वार है, नरक के द्वार है। तो जो जीव इसमें फंसा हुआ है वो नरक में ही जाएगा, उसके लिए कहां का द्वार खुला है, नरक का द्वार खुला हुआ है। लेकिन जो इन तीन चीजों से अपने आप को बचा लेता है, उसके लिए किसका द्वार खुला है, स्वर्ग। अब आप खुद डिसाइड करो आप कहां जाना चाहते हैं। जाना तो सब स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, काम, क्रोध और लोभ इतने फंस गए हैं कि चाह करके भी नरक में जाना ही पड़ता है इनको। इसीलिए हमें काम, क्रोध और लोभ ये तीनों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। एक क्रोध आज जो इतना मारा मारी हो रही है, देखो आप सड़क जाते हो, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टच हो जाती है, दिन इन दिन निपटारा हो जाता है ना, लोग मर्डर तक कर देते हैं, थोड़ी सी गाड़ी टच हुई लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू, मार जान से मार देते हैं, सही से नहीं सहते आदमी, जरा सा पेशेंस नहीं रह गया। घर में जो कलह हो रहा है, घर में पति पत्नी के बीच परिवार के झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात के लिए करता है, जिसका कोई सिर पर नहीं होता, राइट, एक किसके चलते, क्रोध के चलते। क्रोध और तूफान जब शांत हो जाता है तब पता चलता है कि नुकसान कितना होगा। जब आंधी आकर के पूरा उखाड़ देता है, जब आंधी समाप्त हो जाती है ना, तब बाद में जब बाहर निकलते पता कितना नुकसान हो गया। तो क्रोध जब होता है उससे पता नहीं चलता, और क्रोध जब शांत हो जाता है तब पता चलता है, आदमी पछताने लगता है, पने तो अपना ही घर, अपना टेलीविजन में तोड़ दिया, अपना ही घर नुकसान कर दिया, तब पछताने लगता है, मार दिया है, आप समझे ना, यही समस्या है। तो क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भी एक कला है। रूप गोस्वामी जी ने बताया हुआ है, रूप गोस्वामी जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है उपदेशामृत। आप उस किताब को पढ़ें, उसमें जो श्लोक है, वाचो बेगम मनुष्य क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर पस्थ बेगम, ये जो छह इंद्रियां हैं जो अपने आप को नियंत्रित करने में माहिर हो जाए, मास्टर हो जाए, और इन सब चीजों से अपने आप को क्या करेगा, बचा लेगा। उसे बताया गया, प्रभुपाद समझाए कि क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, वाणी के वेग को, है ना, उदर उपस्थ, इन सब वेगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। आज वहां इन छह इंद्रियों में कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हर इंसान क्या है, परेशान। परेशानी की समस्या क्या है कि हमारे अपने इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं। तो यदि आप चाहते हैं कि इसलिए तो लोभ भी बड़ी खतरनाक चीज होती है, आदमी लोभ में फंस जाता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, और ध्यान लगाए हुए थे नदी के किनारे। तो नदी का तट होता ना, आप जैसे नदी के जाए ऐसे पानी आता जाता रहता है, तो जहां तक पानी पहुंचता था उससे थोड़ा सा दूर हट करके वो ऐसे ध्यान लगाए थे, आंख बंद करके ओम का जप कर रहे थे, ध्यान ध्यान योगी थे, ध्यान लगाए हुए थे। उस नदी के अंदर एक घड़ियाल था, घड़ियाल चर्चा हो रही थी, घड़ियाल था, उसको बड़ी भूख लगी थी, और उनकी सारा निशाना उस पर किस पर था, ध्यान ध्यानी के पर था, लेकिन वो थोड़ा पानी से दूर था। अब घड़ियाल पकड़े तो कैसे पकड़े है? तो उसने दिमाग लगाया, जानते घड़ियाल ने क्या किया, और नीचे गया। आप जानते हैं ये जो जल होते, नदी होते, समुद्र में इसमें रत्न पाए जाते हैं, उसने क्या किया कि नीचे तलटी पे जा करके अपने मुख से जो रत्न वहां होते वो ले करके और उनके सामने फेंक दिया। किसके सामने, जो ध्यान ध्यानस्थ योगी ध्यान लगे थे, जब जब उनके ऊपर कुछ गिरा तो उनका ध्यान टूट गया, देखा तो रत्न वो बटोरने लगे। तो इतने में घड़ियाल ऊपर आ गया पानी के ऊपर, और उसने आवाज लगाई, कहे कि ये तो हमने एक ट्रेलर दिखाया है ये तो हमने आपको थोड़ा सा रत लिया है, अगर एक मेरा काम कर दो पंडित जी, है ना ध्यानी जी, एक मेरा काम कर दो कि मुझे तीर्थराज प्रयाग की सैर करा दो, क्योंकि मुझे मालूम कि ये नदी जाती है, जैसे यमुना नदी और गंगा जी जहां मिलती है प्रयाग बनता है त्रिवेणी, तो त्रिवेणी में जाना चाहता था, है ना, तो कहे त्रिवेणी का रास्ता आपको पता है, हमको रास्ता नहीं मालूम, अगर आप हमें त्रिवेणी पहुंचा दीजिए तो हम आपको और ज्यादा रत्न दे देंगे। पंडित जी जो है मान के कि बड़ा अच्छा, बहुत दयावान है, तो कहीं वहां कैसे जाएंगे कि आप हमारे ऊपर बैठ जाइए, फिर आपको हम ले करके हम जाएंगे, आप रास्ता दिखाना है कि इधर चलो तुम चलेंगे। तो घड़ियाल पर बैठ गए, घड़ियाल उनको लेकर के चलने लगा। जब नदी के बीच में गया, अब तेज धारा में था, तो खड़ियाल हंसने लगा। जब वो हंसने लगा तो पंडित जी ने बोला कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो, कि हमें हंसी आपकी मूर्खता प्यारी है। कहें क्यों? क्योंकि इतने बड़े ध्यानी और पंडित होकर के भी आप लालच में फंस गए। तो इन्हें सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े ध्यानी है, सब साधु संत हैं, वो नहीं फंसते, वो ज्यादा फंस जाते हैं। ये वैसे ही ज्ञान था। कहें तुम इतना बड़ा ध्यानी हो, पंडित हो, योगी हो, लेकिन सोने चांदी और रत्न के लालच में क्या गए, फंस गए, इसलिए हमें हंसी आ रही। तो कहीं इसमें हंसने की क्या बात है, है ना? तुमने तो कहा कि मैं जानता हूं अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब आपका सर्वनाश होने वाला है। इतना कह करके उसने उनको उछाला और सामने वो गिर गए। जब गिर गए तो खा गया उनको। तो लोभ बड़ी खतरनाक चीज होती है। वो पंडित आप कितना भी ध्यान योगी हो, लेकिन लोभ में क्या हो जाता है, इंसान फंस जाता है। इसलिए आप जब टेलीविजन में आप देखते होंगे, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े संत बड़ा बड़ा उपदेश देते हैं और सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, राइट? दुनिया को बोलेंगे ये सब माया है, और सारा माया बटोर कर खुद रखते हैं, सोने चांदी के उस पर चलते हैं, है ना? हमारा एक परिचित है, वो है ना, वही टेलीविजन कल उसका प्रोग्राम आया था, इतना फर्जी भाव बना हुआ है कि हम उसको असलियत जानते हैं। पूरा एकदम चमकता हुआ सिर का गिरुआ का पहने का बड़ा तगड़ा, पता नहीं कितना माला लपेट लेता है, ऐसा तिलक लगाएगा, पूरा पूरा पाकर फैला रखा हुआ है ना, आए कितनी बड़ी शंख लेकर चलता है, वो जहां जाएगा शंख बजाएगा, आता जाता कुछ नहीं। और लोग ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, आप सुनिए ना, क्योंकि लोग क्या है, बहुत ज्यादा, लेकिन सच्चाई क्या है, ऐसा नहीं है, नहीं ताम झाम दिखा बड़ा। एक और थे, मैं उनको जानता था, इलाहाबाद जगह इलाहाबाद के, तो जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगता था तो हम जिस गांव के थे वहां गांव में भूमिहार रहते थे, ठाकुर भूमिहार से कहते हैं, ठाकुर में आता ना ब्राह्मण आता है, वो बिचलिया होता है, बनशंकर होता है, वो जाते बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक महीना वो एक दरी ले जाते थे घर से, दरी समझते ना, वो बिछा करके जहां सब साधु लोग बैठे नहीं तरले के लाइन में मांगने वाले सब रखने, वो ऐसा चादर कपड़िया बिछा देते थे और 10-20 रुपए अपना ही पैसा उसमें रख देते थे, ताकि जब लोग आए चाहे, एक बोर्ड लगा देते थे उसमें लिखा देते थे मौनी बाबा, कि ये बाबा बोलते नहीं है। और एक जो जो वाल्मीकि रामायण होता ना संस्कृत वाला, वाल्मीकि रामायण इतना मोड़ करके ऐसे रख लेते थे, अब पूरा तिलक उलक ताम झाम बना करके ऐसे उंगली करते थे, पढ़ना नहीं आता था। इस सत्य घटना व्यवहार है, अब बोर्ड लगवा रहे थे मौली बाबा ताकि कोई पूछे नहीं। अपने रोजी रोटी के लोग क्या नहीं करते, आसान है। अब उस दिन के बोर्ड लगाते मौली बाबा बोले बस ऐसे लोग क्या चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे, एक महीने में उस साल भर की कमाई कर जाते थे। आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि दुनिया धोखा देने वाले भी है और धोखा खाने वाले भी हैं, आसान है। तो इसलिए हमें बड़ा सतर्क करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण के अलावा और दर दर फटकने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी वास्तव में इस काम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे संसार के लोग बाबाओं के चक्कर में, ग्रहों के चक्कर में फंसे हुए, जैसे इसमें शनि ग्रह की बड़ी चर्चा हो रही है, उसमें देखो दुनिया भर के लोग अपन अपनी बातें कर, राइट? हमें इन चक्रों पढ़ना ही क्यों है? हमें तो बस एकमात्र किसको पकड़ना है, कृष्ण को, जो सबके उद्गम, जैसा कि गजेंद्र यही कर रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूं क्योंकि आप परमात्मा हैं, हर एक अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष हैं, प्रकृति समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम, आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। ये हमारा जो शरीर है ये किसका बनाया हुआ है? भगवान का बनाया हुआ, और तभी तक चलता है जब तक भगवान की कृपा रहती है। इसके चलाने वाला कौन है? भगवान ही है। भागवत में बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर हृदय में दो रहते हैं, एक परमात्मा के रूप भगवान रहते हैं और उनका अंश जो हम है आत्मा। तो परमात्मा और आत्मा ये दोनों हृदय में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तब तक जब तक आत्मा रहती है तभी तक हमारा क्या रहता है? जीवन रहता है। और आत्मा इस शरीर में तभी तक रहती है जब तक इस शरीर आत्मा के रहने के लायक रहती है। जैसे ही हम इस शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमारी का घर बन जाता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है? आत्मा छोड़ देती है, फिर दूसरे शरीर में नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक भगवत गीता भगवान बताए हैं कि जैसे आदमी फटे पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा एक जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। तो हमारी यही स्थिति है, हमारी क्या है? यही स्थिति है। हम इस संसार में इंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए हम शरीर को लेके आए हैं। जब ये शरीर इंजॉय के लायक नहीं रहती, देखो हम कितने स्वार्थी हैं कि हम इस संसार में आते हैं शरीर को लेकर के आते हैं, लेकिन जब इस संसार जाते हैं तो शरीर छोड़ देते हैं। अर्थात जिस शरीर को हम खुद लाते हैं हम उसके भी सगे नहीं है। मैं जो समझाना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने शरीर का सगा नहीं हुआ, हमारा आप कैसे हो सकता है? ठीक है उजा जी, ये उजा जी है, ये बहुत दारू पीते थे अपने जमाने में। क्योंकि बहुत पैसा था इनके पास, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री थी। जब हमारे संपर्क में आए ये चार पांच भाई, एक भाई भी दो भाई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया काफी प्रगत कर गए है ना, बहुत पुरानी घटना है राइट। ये सब पैसा कमाते थे, उड़ाते भी थे मस्त। लेकिन अब देखिए भगवतों के संपर्क में आकर के सब कुछ क्या हो गया? छूट गया। अब माला पकड़ जप कर रहे हैं। यही सिद्धांत है। प्रभुपाद जी ने ये संस्था इसीलिए बनाई थी कि हम पहले उनकी जो बुरी आदतें हैं उसको क्या करें? छुड़ाएं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इनका परिवार पूछिए कितना खुश, पूरा परिवार राइट। इनके बड़े भाई अभी अमेरिका में पूरी तरह सेटल हो गए। जब हमारे गुरु महाराज जाते हैं तो उनके घर भी जाते हैं, इनका भी पूरा परिवार जो है कोई ऑस्ट्रेलिया में रहे, कोई कहाँ रह रहे है। लेकिन इसकी हमसे इस कांस, क्योंकि मैं जब यहाँ का प्रेजेंट था तब की बात है, बहुत पुरानी बात जब जुड़े थे तब समझे। जुड़ने से देखो अच्छा हुआ कि नहीं। तो आदमी को सुधारने के लिए हमें क्या करना? अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता था है। जब आप किसी से जुड़ेंगे, भक्तों जुड़ेंगे, तभी भक्ति आप पर चढ़ेगी। क्योंकि शास्त्र ही कहता है कि आप जैसा संग करेंगे वैसे रंग चढ़ेगा। शराबी का संग करेंगे तो शराब पीने का रंग चढ़ेगा, जुआनी के साथ बैठे तो जुआ करने की आदत पड़ेगी, जब कतरा के साथ बैठे जब कतरा सिखाएगा राइट। आप कैसा संग करेंगे वैसा चढ़ेंगे। भक्तों की संगत में आएंगे तो माला पकड़ लेंगे। जैसे आहूजा परिवार जब आए जानते हैं, जब सटरडे फिस्ट हुआ करती थी उस जमाने में, हर सटरडे को आइसक्रीम फ्री होती थी इनकी तरफ से। इनकी आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री थी जो फिस्ट होती हमारे यहाँ हर माने हर सटरडे को आइसक्रीम और कुल्फी। तो कहने का तात्पर्य है कि यही सब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम भक्तों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम एक एक लोगों से मिले और उनको पहले मनुष्य बनाए। कि आज आपको सब पता है, अखबार न्यूज आप देखिए लोग कितने गंदे विचार के हो गए हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं, कैसा कर्म नहीं कर रहे हैं है ना क्या। तो इसीलिए आप सब जितने भक्त यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों को क्या करिए? बचा लीजिए। अगर आप किसी के सुचेतन बनते हैं तो आप उसको भक्ति दीजिए, वो क्या होगा? इससे बड़ा उपकार है। यही चैतन्य महाप्रभु को क्या है? आदेश है कि भारत भंते हर जमजार जन्म सार्थक कर कर परोपकार। अगर आप परोपकारी बनना चाहते हैं तो आप चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जिसने भारत जन्म लिया उसका कर्तव्य वो भक्ति करके अपना कल्याण करे और दूसरों को भक्ति दे करके उसका भी क्या करे कल्याण करे। तो आप अपने जितने भी जैसे लेडीज हैं तो लेडीजों का अपना ग्रुप होता है, आप उनको प्रचार करो, है ना, उनको मंदिर लेके आओ। मंदिर में अगर किसी को लाएंगे तभी वो सुधरेगा, है ना। क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि मंदिर में लाना इतना आसान नहीं है किसी को आज के जमाने में। ये उसी तरह से है जैसे सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन है ना, किसी बड़े सेठ को मंदिर लाना उतने ही कठिन है जितने सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन है। कि एक सुअर को इंजेक्शन लगाने के 5 आदमी चाहिए, 4 उसको पकड़े फिर एक इंजेक्शन लगाए। देखो लोग मंदिर नहीं आना चाहते आराम से, है ना। जब आप बोलेंगे कि आज हमारे राधिका रमन जी बड़ा श्रृंगार हुआ है, बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, शेर जी आ पाए, शेर जी क्या बोलेंगे, स्वामी जी मेरे आने की तो बड़ी इच्छा है। इच्छा है नहीं, लेकिन झूठ बोलने में क्या जाता है। हाँ। बोलेंगे स्वामी जी मेरे आने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं स्वामी जी, मरने तक ले फुर्सत नहीं। ऐसा बोलते नहीं बोलते, ऐसा बोलते। और फिर जानते क्या होंगे कि स्वामी जी आप जानते हैं बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता। इसका कहने बोलते हैं जब बिना भगवान पत्ता नहीं हिलता तो मैं इतना मोटा ताजा सेठ कैसे हिल सकता हूं, इतने आसानी से कैसे हिल सकता हूं। फिर लास्ट में महा झूठ बोलते हैं, है ना। फिर कहेंगे स्वामी जी जब भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे। अरे भगवान क्या गरज पड़ी आपको बुलाने के लिए, है ना। भगवान क्या गरज पड़ी आपको बुलाने, वो तो हजारों हजार करोड़ लक्ष्मी के साथ आनंद उठा रहे हैं, राइट है। राधा रानी से चैन की बंसी बजा, तुम्हें कष्ट है तुम्हें भगवान के पास आना चाहिए। नहीं लोग क्या बोलेंगे, जब भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। भगवान काहे बुलाएंगे, काहे बुलाएंगे, भगवान क्यों बुलाएंगे। हाँ आप खुद बताइए, जब आपको बंबई जाना होता है तो एयरपोर्ट आपके पास आता है, मानो राजधानी जाना चाहते हैं राजधानी आपके पास आती है, आपको जाना पड़ता है। अगर आप अपना उद्धार चाहते करना चाहते आपको जाना पड़ेगा, कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, ये सोचना चाहिए। लेकिन लोग इतने निर्लज इतने मूर्ख हो गए हैं कि यहां तक बात करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जो एक क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, है ना, तो उसका एक भाई है, तो किसी ने उसका नंबर दिया था कि आप इससे बात करो, है ना। अब मैंने बात किया, अरे कहीं स्वामी मैं तो बिल्कुल नास्तिक आदमी, मैं तो मंदिर जाता ही नहीं, है ना, आप बेकार हमारे पीछे पड़े हैं, है ना। अब ऐसे लोगों से हम क्या बात करेंगे, है ना। मैंने जब फोन किया तो सीधा ऐसे बोल दिया, है ना, कि मैं तो बिल्कुल नास्तिक, मैं तो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, है ना। तो लोग इस संसार में कितने गिरे हुए हैं आप पता नहीं सकते। हम सबकी जिम्मेदारी, आज प्रभुपाद जी ने, एक प्रभुपाद जी अकेले गए, देखो इस कान के कितने साल हो गए, 50 साल हो गए। 50 साल में इस कान पर दुनिया में 600 से ज्यादा मंदिर बना दिया, कितने करोड़ करोड़ गीता बढ़ चुकी है पूरे दुनिया में। प्रभुपाद जी कितना बड़ा काम किया अकेले प्रभुपाद जी के, आज देखो कितने लोग यहां बैठे बैठे हुए, है ना। एक व्यक्ति आकर के पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, कृष्णमय बना दिया। हम लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, कम से कम दिल्ली को सुधार देना चाहिए। अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली की संख्या कितनी है, कम से कम 2 करोड़ है कि नहीं है, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमको घर घर जाना चाहिए। जैसे हमारे सामने एक ब्रह्मचारी बैठे, नाम क्या है, मुरली कृष्ण, इनको हम जानते कैसे भक्त बनाया था। जब इनके पिताजी से राठी साहब से, इस इनके पिताजी सूर्याबल में काम करते थे, बहुत पहले की बात है, मैं इनके घर गया, किसी ने इनके पर इनके पिताजी के नंबर दिया था कि इनको मेंबर बनाओ, मैं गए इनके पिताजी को मेंबर बनाया। फिर दूसरे एक अरोड़ा जी थे, उनको मेंबर बना दिया। तो जिस पार्ट में रहते थे पूरे पार्ट में, तो 2 हमको लोग मिल गए। हमने क्या किया, इनके पिताजी के साथ और अरोड़ा जी के साथ बैठ करके प्लान किया। इन लोगों ने ये डिसाइड हुआ कि हर संडे को हम लोग सुबह जा करके वहां फेरी लगाएंगे, 2-4 भक्त कीर्तन करेंगे ये पार्ट के अंदर, है ना। अब शुरू बड़ा सक्सेस रहा, कि सुबह यहाँ से मंगल आरती बाद हम लोग जाते थे इनके पाड़ में, इनके पिताचार पंथ लोग और हमारे भक्त जाते थे, सब कीर्तन करते। उससे क्या हुआ कि पांच छह लोग और जुड़ गए। फिर हम लोग जितने पड़ोस में अपार्टमेंट थे वहाँ यही सिलसिला शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। अब आप बेटा देखो फुल टाइम ज्वाइन कर लिया, पूरा परिवार भक्त बन गया। सोचने वाली बात हमारे सुरेंद्र जी है ना, ऐसे कितने पूरे जानते। फिर रोहिणी से सटरडे को बस आने लगी, एक एक दो दो बस आने लगी, पूरा हर छोटा पड़ने लगा। एक कैसे हुआ, प्रचार से, यही है प्रचार, प्रचार का सार। इसलिए भगवान को दिमाग दिया हुआ है कि कैसे हम लोगों को भक्त बनाए, कैसे उनको भक्ति दे, ये दिमाग क्या करना चाहिए उसमें यूटिलाइज करना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने किया। तो आप सब बहुत जिम्मेदारी है, देखिए सब कुछ के जीवन का आधार भगवान कृष्ण ही है। तो आप सबकी ही जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचिए, उनको मंदिर लाने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर मंदिर आएंगे तो बाकी काम कौन करेंगे, ठाकुर जी खुद करेंगे। आपको बस किसी तरह से पकड़ कर लाना है, प्रयास करिए। अब देखिए धीरे धीरे ठाकुर जी आपको बुद्धि देंगे, फिर भक्त बन जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, समझ जाता हूँ। कोई प्रश्न है आप लोग? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथ राशि भागतम की।